आपको नमस्कार। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से जिला समन्वयक दिनकर पाकुर का। अभी हाल ही में यूक्रेन में युद्ध जैसी स्थितियां निर्मित हुई और यूक्रेन में छिंदवाड़ा जिले के छात्र भी फंसे हुए थे और आज ही अपने गृह ग्राम बडोसा में लौटी छात्रा छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर गौरी रूबरू होने जा रही। नमस्कार गौरी बेटा।
नमस्ते सर।
गौरी बेटा, हम आपसे जानना चाह रहे कि यूक्रेन में जब युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हुई तब आपको यूक्रेन सरकार और आपकी यूनिवर्सिटी से क्या मदद मिली और आप कौन सी क्लास में और किस तरह की पढ़ाई कर रही थी?
मैं यूक्रेन में टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल MBBS की पढ़ाई कर रही थी, थर्ड ईयर में।
आपको वहां पर युद्ध जैसी स्थिति निर्मित होने पर यूक्रेन सरकार के द्वारा अलर्ट किया गया था?
नहीं सर, वहाँ यूक्रेन सरकार कह रही थी कि यहाँ कोई स्थिति कोई गंभीर नहीं है, आप लोग शांत रहिए, हम लोगों की बात जारी है रशिया वालों से, हम लोग ये सब सॉल्व कर लेंगे, कोई युद्ध नहीं होने वाला है। वो हमें मेल कर रहे थे, साथ में यूनिवर्सिटी भी बोल रही थी कि अभी कंडीशन स्टेबल है, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ।
तो आपको ये कब ऐसा लगा कि अभी युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई और अभी हमें अपने स्वदेश लौटना चाहिए?
जब तक हमारी यूनिवर्सिटी और वहाँ की सरकार जो है वो जब तक बोल रही थी तब तक तो हमें उन्हीं पे ही भरोसा था सर कि वो लोग नहीं होने देंगे युद्ध। ये उन लोग 23 फरवरी की शाम तक यही कह रहे थे कि नहीं होगा युद्ध, लेकिन जब 24 फरवरी को उन रशिया से अटैक हुआ, वहाँ की 3 सिटी जो है ओडेसा, खार्किव और कीव जो उसकी राजधानी है वहाँ पर, तब हमें पता चला कि नहीं, अब यहाँ युद्ध हो रहा है, शुरू हो चुका है।
तब आपको यूनिवर्सिटी ने सूचित किया या फिर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से मांग की?
उसके बाद में जब ये सब हुआ, उसके बाद में 2-3 घंटे कुछ बाद हम लोगों को एक मेल फिर आया जिसमें लिखा था कि अब खतरा शुरू है, मतलब अब युद्ध शुरू हो चुका है, यहाँ से आपको खतरा हो सकता है।
तो तब आपने क्या किए?
तब हम लोग क्या कर सकते थे सर, वहाँ पे कुछ उन लोगों का कहना था कि अब आप अपने अपने घर चले जाइए, जो बच्चे जाना चाहते हैं।
तो यूक्रेन सरकार और आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा फिर आपको घर वापसी के लिए कोई सुविधा उपलब्ध करवाई?
नहीं सर, उनका कहना था कि ये आपको अपने ही अकॉर्डिंग करना पड़ेगा खुद से, इसमें ना यूक्रेन सरकार ने हमारी कोई हेल्प की ना हमारी यूनिवर्सिटी ने, किसी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ करना था खुद से करना था।
फिर आपने किस तरह स्वदेश लौटने के लिए अपनी प्लानिंग बनाई और छिंदवाड़ा जिले से और प्रॉपर संस्था से आपके साथ कितने लोग थे?
सौसर से एक लड़की है सर, चैतन्य लोनारे, वो तो मेरे साथ।
आप साथ में थे?
नहीं, हम लोग साथ में ही रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने बॉर्डर अलग अलग क्रॉस की।
क्या चैतन्य अभी पहुंची या नहीं पहुंची?
चैतन्य नहीं, इंडिया नहीं पहुंची सर अभी।
तो फिर आप चैतन्य अभी इंडिया पहुंचने की है, तो
हाँ।
आप जब इंडिया पहुंची तो उसमें आपको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
वहाँ पर बॉर्डर जैसे हम बस तो अरेंज नहीं हो रही थी सर, तो जैसे तैसे करके हमने बस अरेंज की, वहाँ पे ड्राइवर मानने के लिए रेडी नहीं थे कि आपको हम लेके जाएंगे, क्योंकि उनको आर्मी में भर्ती करवाया जा रहा था जबरदस्ती, तो हमको यूनिवर्सिटी के कुछ एजेंट है जिन्होंने बस प्रोवाइड करवा के वहाँ बॉर्डर तक पहुँचाया, बॉर्डर तक नहीं, बॉर्डर से 35 किलोमीटर दूर, 30 से 35 कुछ किलोमीटर दूर पे हमको उतार दिया गया, वहां से हमको पैदल चल के जाना था बॉर्डर तक।
तो बॉर्डर तक जब आप पहुंचे तो आपको बंकरों में रहना पड़ा क्या?
नहीं सर, बंकरों में तो जब हम वहां थे ना टर्नोपिल में,
हाँ?
जिस दिन हमला हुआ उसके बाद में हम लोग 2 दिन तक नहीं निकले थे वहां से।
तो बंकर के आपके क्या अनुभव, आपको कैसा महसूस हुआ वहां पर?
बंकर क्या सर, बंकर क्या होता है, बस एक नीचे में घर के नीचे में एक अंडरग्राउंड स्पेस होता है, कुछ नहीं होता है वहाँ, ना खाने का ना पीने का कुछ, डर के माहौल में ही रहना होता है कि कभी भी हमला हो सकता है।
उस समय आपके खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पाई?
नहीं, क्योंकि ये था कि तुम अगर जा रहे हो ऊपर और हमला हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार है, इसलिए हम लोग बंकर में ही थे सर 2 दिन तक, कंटिन्यूसली हम लोग बंकर में ही थे, हम लोग बंकर से बाहर नहीं निकले।
हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि भारत सरकार ने आपके स्वदेश वापसी के लिए क्या प्रयास किए?
भारत सरकार का रोल रोमानिया से शुरू होता है सर,
हाँ?
क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने में उन्होंने भी कुछ नहीं, वो कर भी कुछ नहीं पाते थे वहाँ पे, वो खुद से हमने क्रॉस की रोमानिया तक, उसके बाद में रोमानिया में हम लोगों से सिंधिया जी मिलने आए थे, सिंधिया सर, उन्होंने बात की, रोमानिया में हम लोग 3 दिन रुके, वहां से बस प्रोवाइड की, बस से हम लोगों को बुचारेस्ट लेके आया गया। वहां पे आए थे सर, उन्होंने बात की, उन्होंने समझाया कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम 4 मिनिस्टर अलग अलग 4 बॉर्डर पे आए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए, जब तक आप नहीं चले जाते तब तक हम आपके साथ खड़े। उससे बहुत हिम्मत मिली सर।
तो सिंधिया जी आपसे कहाँ मिले?
बुचारेस्ट में।
और वहां से उन्होंने आपको प्लेन में बैठा दिया?
हाँ सर, उन्होंने बोला था, हमको प्रॉमिस किया था कि अगले 24 घंटे में आपका जितना ये शेल्टर के जितने भी लोग हैं, वो हम लोग कुछ 160 162 कुछ लोग थे सर, उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगले 24 घंटे में आप सभी 160 162 लोग यहाँ से इंडिया के लिए निकल जाएंगे। और वो प्रॉमिस सही भी हुआ सर, क्योंकि अगले ही दिन सुबह हम लोगों की 11 बजे की फ्लाइट थी।
जब आप वहां से प्लेन में बैठे तो आज आप कहाँ पर उतरे?
मैं दिल्ली में सर,
कितने बजे?
मैं 12 मतलब रात में 12 बजे करीब।
रात को 12 बजे आप कल
हाँ,
दिल्ली में उतरे, तो वहां पर मध्य प्रदेश शासन की ओर से आपको क्या मदद मिली?
मध्य प्रदेश शासन वहाँ हमको रिसीव करने आया था सर, जहाँ से निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर, मतलब बाहर नहीं, एयरपोर्ट के ही अंदर जहाँ आप ट्रेन से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे सभी स्टेट के लोग अपने अपने बोर्ड लेके खड़े थे।
तो
वहीं
आप
एक एमपी का भी बोर्ड था, एमपी वाले भी, गवर्नमेंट वाले खड़े थे
तो मध्य प्रदेश
उन।
शासन की ओर से कोई प्रशासनिक अधिकारी आए थे या कोई जनप्रतिनिधि?
कोई सतीश सर थे सर,
हाँ
वो कुछ वहीं गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं एमपी में,
हाँ
तो उन्होंने हम लोगों को वहां से रिसीव किया, वहां से अपने काउंटर पे लेके गए सब बच्चों से। हम कुछ 15 कुछ बच्चे थे हमारे ग्रुप में जो एमपी से थे, उन्होंने हम लोगों को ये पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो सब लोग बता रहे थे हमें यहाँ जाना है। उन्होंने बोला कि सबसे पास की जगह बताइए, आपके घर के सबसे पास जो भी जगह है हम आपको वहाँ छोड़ देंगे, आप जैसे भी जाना चाहो, बस से जाना चाहो, प्लेन से जाना चाहो, ट्रेन से जाना चाहो, आपको जैसे जाना है वैसे हम सुविधा प्रोवाइड करवा देंगे, आपको
हाँ
टिकट करवा
बहुत
देंगे।
बेटा, हम आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली से जब आप अपने गृह ग्राम बड़ौसा पहुंची तो इस बीच जो लगने वाला खर्च है टिकट का, खाने पीने का, ये किसने वहन किया? आपने स्वयं ने किया कि मध्य प्रदेश शासन ने किया?
मध्य प्रदेश शासन ने मुझे दिल्ली से नागपुर तक की फ्लाइट करवा के दी थी सर, क्योंकि छिंदवाड़ा से नागपुर बहुत पास पड़ता है और छिंदवाड़ा में कोई एयरपोर्ट नहीं, तो इसलिए उन्होंने नागपुर के लिए अरेंज करवा दी थी मेरे लिए फ्लाइट। और फिर वहां से मैं निकल के अपने घर आई, मुझे अपने फैमिली वाले नागपुर एयरपोर्ट पे लेने आए थे सर। नागपुर तक का जो खर्चा था वो सारा गवर्नमेंट का था सर।
नागपुर से आपके गृह ग्राम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन ने नहीं उठाई।
नहीं
हम आपसे अब ये जानना चाह रहे कि आपने जब यूक्रेन में पढ़ाई की और अपना भारत देश है, तो इसमें आपको सबसे अच्छा यानी कहाँ लगा? अपना स्वदेश में अच्छा महसूस कर रही थी कि वहां पर?
ऑब्वियस सी बात है सर, सबको अपना ही देश प्यारा होता है, मुझे भी था अपना ही देश प्यारा, लेकिन कुछ मजबूरियां थी, जैसे यहाँ पे फीस काफी लग रही थी,
हाँ
लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ कुछ रुपए। अब इतनी तो नहीं थी सर कि 1.5 करोड़ रुपए मतलब लगा पाए पढ़ाई में, क्योंकि
हाँ
मेरे और भी छोटे भाई भाई है तो उनकी भी पढ़ाई का खर्चा होता है, तो इसलिए अब मेरा भी सपना था कि मुझे एमबीबीएस करना है और घर वालों का भी, तो उस चक्कर के दौरान मुझे भेजा गया यूक्रेन एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए।
बेटा, जैसा आप बता रही है यानी कि भारत से सस्ती शिक्षा यूक्रेन में मिल रही है
हाँ, सस्ती मिल रही है सर भारत
और
में,
भारत में सबसे
महंगी है, बहुत महंगी है सर, लगभग 4 गुना।
4 गुना भारत में यूक्रेन से महंगी है।
जी सर,
बहुत बहुत धन्यवाद बेटा गौरी, आप अपने घर ग्राम वापस पहुंची। इसके लिए मध्य प्रदेश मोबाइल वाणी एवं छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि
थैंक
आप
यू सर,
अपनों की भी
धन्यवाद।
सोची।
थैंक यू सर,
बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सर।